इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात माने शरीर, चेतना अर्थात प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। व्याख्या, इच्छा अमुक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि मिले, ऐसी जो मन में चाहना रहती है उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो। संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेष, कामना और अभिमान में बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप होता है उसको द्वेष कहते हैं। यहां द्वेष पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। सुखम, अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है उसको सुख कहते हैं। दुखम, प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है और प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं है उसको दुख कहते हैं। संघात, 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है। उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना, चेतना नाम प्राण शक्ति का है अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और शोक चिंता भय उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं, इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धृति, धृति नाम धारण शक्ति का है। यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है, कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। अतः धृति भी क्षेत्र का विकार है। 18वें अध्याय के 33वें से 35वें श्लोक तक धृति के सात्विकी, राजसी और तामसी तीन भेदों का वर्णन किया गया है। परमात्मा की तरफ चलने में सात्विकी धृति की बड़ी आवश्यकता है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारहितम्। जैसे पहले श्लोक में इदम शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा, ऐसे ही दृश्य से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहाँ एतत् पद कहा गया है। पांचवें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और छठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा द्वेष आदि विकार होते नहीं। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों एक ही है। जैसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर में और उसमें होने वाले विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बताते हैं। आगे 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर में न बताकर प्रकृति में बताई है, पुरुष प्रकृति स्थोई। इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में ही होती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही है। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि तो है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है, जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग मानना भी भूल ही है। विशेष बात, क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब क्षेत्र में इच्छा द्वेष आदि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। इस माने हुए संयोग को मिटाने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और दूसरे श्लोक में परमात्मा से अपने नित्य संयोग का अनुभव करने के लिए कहते हैं। ऐसा अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानी हुई एकता का सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होने पर अर्थात क्षेत्र से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना, अपने में विकार होना ये दोषी है। ज्ञान किसी का भी दोषी नहीं होता। जैसे भोजन करते समय जीभ में स्वाद का ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत भोजन के पदार्थों में राग या द्वेष होना दोष है। जीवन मुक्त महापुरुष का संघात अर्थात शरीर से किंचन मात्र भी मैं मेरे पन का संबंध न रहने के कारण उसका कहा जाने वाला शरीर यद्यपि महान पवित्र हो जाता है, तथापि प्रारब्ध के अनुसार उसका ये शरीर रहता ही है। जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना भी रहती है, प्राण शक्ति भी रहते हैं। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत रहती है। साधना अवस्था में जो सात्विकी धृति थी वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण से तादात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धृति रूप विकारों से कोई संबंध नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार पैदा होते हैं वे विकार बोध होने पर नहीं होते। संघात चेतना और धृति रूप विकारों के रहने पर भी उसका स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। परिशिष्ट भाव, क्षेत्र के साथ संबंध रखने से ही इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं। पुरुष है सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, 13वें अध्याय का 20वां श्लोक। इच्छा द्वेष आदि सभी विकार तादात्म्य जड़ चेतन की ग्रंथि में ही है। तादात्म्य में भी ये विकार जड़ अंश में रहते हैं। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को एतत् कहा है। एतत् का अर्थ होता है यह, एतत् क्षेत्रम। इसका तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रत्युत सर्वथा अलग है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महतत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया तो फिर अहंकार के एतत् होने में कहना ही क्या है। अहम से नजदीक तो महतत्व है और महतत्व से नजदीक प्रकृति है, वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्रम में है। तात्पर्य यह है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वयं को और अहम को अलग अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 13वें का 23वां।